मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 28 जनवरी 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और यह आभार है आप सबकी गणतंत्र दिवस पर प्राप्त ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम लोग लाइफ मैनेजमेंट पर सीधे आते हैं। कल मैंने आप सबको एक केस स्टडी प्रोवाइड किया था। सच में जब शाम को मेरे पास ईमेल आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया। क्या देख करके? ईमेल की मोटाई देख करके, यानी कि इतने सारे पेजेस मेरे सामने उपस्थित थे कि मैं समझ गया कि इस केस स्टडी में आप सब लोगों ने बहुत अच्छी रुचि दिखाई है। और जब मैं वो मेल पढ़ने लगा तो डेफिनेटली मैं अभिभूत हो उठा। अभिभूत इसलिए हो उठा क्योंकि जब मैं आपकी मेल पढ़ रहा था तो मुझे उस मेल में अलग अलग तरह के आयाम दिखाई पड़ रहे थे, कोण दिखाई पड़ रहे थे, डायमेंशंस दिखाई पड़ रहे थे। कोई किसी तरीके से उस केस स्टडी के बारे में अपनी राय दे रहा था, कोई बिल्कुल उससे भिन्न तरीके से दे रहा था। मतलब कुछ तो उसमें ऐसी राय थी, निष्कर्ष थे कि उनके बारे में मैं भी नहीं सोच पाया था कि सच में इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी मिलेंगी। अब आप थोड़ा सा इस बात पर गौर कीजिए, केस एक ही है। मैंने तो आपको सबके सामने एक ही मामला रखा है, चलिए हम इसे मामला कह लेते हैं, एक ही है। सारे तथ्य बिल्कुल एक ही हैं और उसके बारे में जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है। और सच पूछिए तो जब मैं ये जानने की कोशिश करने लगा कि क्या इनमें से कोई दो निष्कर्ष ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मेल खाते हों, तो मुझे असफलता हाथ लगी। सारे निष्कर्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग। हाँ, यदि हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत उनमें आपस में मेल था, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरह से एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं थे। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे जो बात सिद्ध हो रही है वो ये कि देखिए कि मामला एक ही होता है लेकिन हम सबके निष्कर्ष अलग अलग होते हैं। तो सवाल यह है कि हम सबके निष्कर्ष अलग अलग क्यों होते हैं, यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम सबके जिंदगियों का जो स्वरूप अभी है और आगे हमारी जिंदगियां जो स्वरूप ग्रहण करेंगी, मान करके चलिए कि उसका जो आधार होगा, उसका जो सांचा ढांचा होगा जिसके आधार पर हमारी जिंदगियां बनी हैं और बनेंगी, वो पूरी तरह से हमारे अपने निर्णय होंगे। जैसा हमने निर्णय लिया है अभी तक, उसी के आधार पर हमारी वर्तमान तक की जिंदगी है। और आगे हम जैसे निर्णय लेंगे उसी तरह हमारी जिंदगी ढलेगी और बनेगी। जिंदगी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि यह निर्णय आपका था या आपके परिवार का था या आपके दोस्त का था या समाज के दबाव का था, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी का तो लेना देना बस सिर्फ इस बात से है कि आपने एक निर्णय लिया, यानी कि जिंदगी को इशारा कर दिया कि तुम्हें ऐसा बनना है या इधर चलना है, और बस जिंदगी उसी तरह से बनना और उसी तरफ चलना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, सवाल इस बात का नहीं है कि हमें यह निर्णय क्यों लेना पड़ा, सवाल तो बस सिर्फ इस बात का है कि मैंने यह निर्णय लिया। मित्रों, यह बहुत खूबसूरत केस स्टडी मुझे अब लग रहा है, शुरू में तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब आपकी सबकी प्रतिक्रियाएं मिली तो मुझे लगा कि अनजाने में ही मैंने बहुत ही एक खूबसूरत मामला आप सबके सामने रख दिया है। तो आइए इस पर थोड़ा सा और भी विस्तार से बातें करते हैं। मैं अभी इस केस स्टडी पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात पर बात कर रहा हूं कि जब आप इस केस स्टडी के बारे में सोचते हैं तो आपकी जो सोच है वो किस तरीके की होनी चाहिए। क्या सोचते समय इन बातों का ध्यान आपने रखा, और अगर नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा, इस पर आप विचार कीजिए। कुछ का रखा, कुछ का नहीं रखा तो ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी विचार कीजिए। क्योंकि मेरी मान्यता यह है कि हमारे निर्णय भले ही गलत क्यों ना हो, गलत हो सकते हैं और होते ही हैं, लेकिन वो बहुत सोचे समझे निर्णय होने चाहिए, विचारपूर्ण निर्णय होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने जिंदगी में जितने भी निर्णय लिए वो सबके सब सही हुए, सवाल ही नहीं उठता है। सफल लोग केवल वे होते हैं कि जो 51 निर्णय जिनके सही हो जाते हैं और 49 निर्णय जिनके गलत होते हैं, यानी कि गलत निर्णयों की संख्या सही निर्णयों की तुलना में कम होती है, या यूं कह लीजिए कि जो जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले निर्णय होते हैं वे सही होते हैं, और जो कम प्रभावित करने वाले निर्णय हैं वो गलत भी हो जाते हैं तो उनका प्रभाव जीवन पर उतना ज्यादा नहीं पड़ता। तो दोस्तों, निर्णयों का बहुत बड़ा रोल, या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ा रोल हम सबकी जिंदगियों में होता है, इसलिए जो हम निर्णय लेते हैं बहुत ही सोच समझकर, विचार पूर्वक, और यदि मैं एक शब्द अलग से कहना चाहूं तो वैज्ञानिक तरीके से लिया जाना चाहिए। देखिए, जब मैं वैज्ञानिक तरीके से निर्णय लेने की बात कह रहा हूं तो उसका अर्थ क्या है? उसका जो अर्थ है वह है तटस्थता से। तटस्थता का मतलब है कि यदि मैं अपने जीवन के बारे में कोई फैसला ले रहा हूं तो अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीवन मेरा है और फैसला भी मुझे लेना है। तो आपको लगता है कि तटस्थता इतनी आसान सी बात है कि मैं तटस्थ रह सकूंगा? आप देखिए, हमारे यहां कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टर, अगर डॉक्टर को अपने परिवार के किसी सदस्य का कोई गंभीर ऑपरेशन करना हो तो वह डॉक्टर खुद ऑपरेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वह उस पेशेंट से जुड़ा हुआ है, उसे इस बात का डर है अंदर से, सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर, कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गलती हो जाए और इसकी डेथ हो जाए। और सच बात यह है कि अगर आपके मन में इस तरह का डर समा गया है, इस तरह की आशंका आ गई है, तो आप इस तरह की गलती कर बैठेंगे। तो डॉक्टर अपने परिवार के सदस्यों का, अपने प्रियजनों का ऑपरेशन नहीं करते। न्यायाधीश के बारे में भी यही कहा गया है कि यदि किसी भी मामले में न्यायाधीश के परिवार या उसके संबंधी के कोई सदस्य शामिल है तो न्यायाधीश उस पर निर्णय नहीं देगा। और उसका कारण यह है कि उसके निर्णय में तटस्थता नहीं होगी, वो खुद शामिल हो जाएगा। मित्रों, इसके बारे में मैं एक आप बीती छोटी सी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। मैं एमए फाइनल का स्टूडेंट था। एमए प्रीवियस में यूनिवर्सिटी में मेरी फिफ्थ पोजीशन आई थी और मैं सोच रहा था कि मुझे फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए और उसकी संभावना हो सकती थी क्योंकि मार्क्स का डिफरेंस बहुत कम था। तो हमारे एमए फाइनल में एक पेपर होता है लिंग्विस्टिक का, भाषा विज्ञान का। भाषा विज्ञान पेपर मेरा बहुत अच्छा है और चूंकि उसमें विज्ञान था, मेरी थोड़ी रुचि इस तरह की चीजों में अधिक होती है कि कैसे किसी चीज को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा जाए, तो उसमें मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। और उस समय हम लोगों के आप यूं कह लीजिए कि सेमेस्टर सिस्टम तो नहीं, इंटरनल असेसमेंट होते थे, यानी कि कॉलेज में ही डिपार्टमेंट एग्जाम लेता था, 5 एग्जाम होते थे और उनके मार्क्स भी हमारे एनुअल एग्जाम में जुड़ते थे, लेकिन इसका केवल 25%। और बकायदे जो पेपर होते थे वो कॉपी आती थी, कॉपी जचती थी, वो कॉपी फिर स्टूडेंट को दे दी जाती थी और बकायदे उस कॉपी पर फिर क्लास में डिस्कशन भी होता था कि इतने नंबर क्यों मिले, इतने कम क्यों मिले, क्या होना चाहिए। बहुत अच्छी पद्धति थी। तो भाषा विज्ञान मेरा बहुत अच्छा था और मैं भाषा विज्ञान के बहुत अच्छे पेपर देता था, लेकिन मुझे कभी भी भाषा विज्ञान में 60% से अधिक मार्क्स नहीं मिले। और मेरा प्लान ये था कि मुझे भाषा विज्ञान में किसी भी हालत में एबव 75% मार्क्स लाने हैं, तभी मेरी रैंकिंग सुधर सकेगी। तो जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जो हम लोगों को लिंग्विस्टिक पढ़ाते थे, जब पांचवा जो असेसमेंट था लास्ट आ गया और मैं देख रहा हूं कि 60% से मुझे ज्यादा मार्क्स मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में धारणा बन गई कि फिर तो मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी 60% से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाऊंगा। तो फिर मैंने क्लास में पूछा कि सर, मुझे इस पेपर में मिनिमम 75% मार्क्स लाने हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि उतने मार्क्स मुझे कैसे मिल सकते हैं, मैं किस तरीके से तैयारी करूं, किस तरह से अपने प्रश्नों के उत्तर लिखूं ताकि मुझे उतने मार्क्स मिल जाएं। तो उन्होंने कहा कि तुम इसी तरीके से लिखो, तुम्हें इतने मार्क्स मिल जाएंगे। मैं सुनकर के चौंक गया। मैं कहा कि सर, अगर मैं इसी तरह से लिखूं और यूनिवर्सिटी में मुझे 75% मार्क्स मिल जाएंगे तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके मार्क्स भी मेरे एनुअल मार्क्स में जुड़ेंगे। तो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा उत्तर दिया था और उन्होंने कुल मिलाकर के ये कहा था, क्योंकि ये पेपर मेरा भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन मुझे कभी भी इससे अधिक मार्क्स नहीं मिले। आप देख रहे हैं कि मेरे पेपर के मार्किंग में किस तरीके उन्होंने अपने अनुभव को शामिल कर लिया है। और सच बात यह है कि जब यूनिवर्सिटी में जब वो पेपर मैंने दिया तो मेरे उसमें 94% मार्क्स थे। सोच करके देखिए। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे मेरे कॉपी को जांचने में वो खुद शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों, हमारे निर्णय लेने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और प्लीज, जब आप इस केस के बारे में सोच रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो अपनी इस स्थिति के बारे में विचार कीजिए। इस विषय पर हम लोग और भी आगे चल करके बातें करेंगे, शायद आप लोगों को मजा आए, मुझे ऐसा विश्वास है। और अगर मजा ना आए तो आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं वहीं इस विषय को बंद भी कर दूंगा। तो दोस्तों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।